श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के गुणगान पिछले 3 दिनों से हो रहे हैं सुबह के क्लास में, और आज भी श्रीपाद माधवेंद्र पुरी और उनके शिष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। कल ये चर्चा हो रही थी कि माधवेंद्र पुरी के कई शिष्य थे, उनमें सन्यासी भी थे और गृहस्थ भी थे, ब्रह्मचारी भी थे। सन्यासी शिष्यों में से उनके सबसे प्रिय थे ईश्वर पुरी और परमानंद पुरी। परमानंद पुरी के बारे में चर्चा कल की थी, और उनके गृहस्थ भक्तों में से, शिष्यों में से सबसे प्रिय थे अद्वैत आचार्य, जो स्वयं तो महाविष्णु या सदाशिव के अवतार तो है ही, साथ साथ महाभागवत भी। अद्वैत आचार्य और श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की मुलाकात पहली बार तब हुई जब माधवेंद्र पुरी गोपाल जी के आदेश के अनुसार गोवर्धन से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे उनके लिए मलय चंदन लाने हेतु। इस बात को, इस घटना को हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, लेकिन संक्षेप में इसके बारे में चर्चा नहीं की थी कि अद्वैत आचार्य, इनके हृदय में माधवेंद्र पुरी के प्रति कितना प्रेम था और किस तरह के शिष्य थे, कैसी उनकी मुलाकात हुई, इसका वर्णन चैतन्य भागवत में आता है। चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों के बारे में कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें से ये 2 ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहला है चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित, और दूसरा है चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर विरचित। वृंदावन दास ठाकुर वास्तव में वेद व्यास के अवतार है, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं, लेकिन एक अलग रस का आस्वादन करने आए हैं। उसी तरह से वृंदावन दास ठाकुर वही वेद व्यास है, लेकिन जो गौर लीला, चैतन्य लीला का आस्वादन करने आए हैं। और जिस तरह से वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में, ठीक उसी तरह से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सुंदर लीलाओं का वर्णन भी किया वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। पहले इस ग्रंथ को चैतन्य मंगल कहते थे, फिर इसका नाम बदलकर इसे चैतन्य भागवत दिया गया, क्योंकि चैतन्य मंगल नाम का और एक किताब है जो कि लोचन दास ठाकुर ने लिखा हुआ है, वो भी बहुत सुंदर किताब है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में। तो 2 किताब चैतन्य मंगल हो गए, इसलिए फिर इसका नाम बदलकर चैतन्य भागवत रखा गया। तो ये 2 ग्रंथ चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत सारे गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चैतन्य भागवत के बारे में बार बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते रहते हैं, और कई बार ऐसे कहते हैं कि ये घटनाएं चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार में किए हैं, और मैं कैसे ये उन्होंने वर्णन किए हुए लीलाओं को मैं कैसे विस्तार में लिख सकता हूं, उन्होंने तो सब किया हुआ है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो उनके प्रति मेरा अपराध हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो कहा है वो केवल संक्षेप में मैं कह रहा हूं। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत में जो वर्णित लीलाएं हैं उनका कभी कभी संक्षेप में भी वर्णन करते हैं, लेकिन बार बार वृंदावन दास ठाकुर को याद करते हैं, चैतन्य भागवत को याद करते हैं। तो माधवेंद्र पुरी और उनके शिष्यों के बारे में सुंदर लीलाएं हम पिछले 3 दिन से जो सुनते आ रहे हैं वो चैतन्य चरितामृत में लिखे हुए हैं। और ये एक लीला जो जिस तरह से अद्वैत आचार्य उनसे मिले और किस तरह से अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव दिवस को मनाया, ये लीलाएं चैतन्य भागवत में आती हैं। माधवेंद्रपुरी भगवान के महाभागवत थे और जिस समय माधवेंद्रपुरी यहां आए पृथ्वी पर, तो उस समय सारे भारतवर्ष में कृष्ण भक्ति प्राय लुप्त हो चुकी थी। सारा वातावरण नास्तिकवाद की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ऐसे वातावरण में भी माधवेंद्रपुरी तो भगवान के शुद्ध भक्त ही थे। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके भक्ति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उतनी ही तीव्रता से वो भगवान की सेवा करते रहे। और इतने शुद्ध भक्त थे कि वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि अपने भक्ति भाव में इतने मग्न रहते थे, इतने मस्त रहते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि वो खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दिन है, रात है, कुछ उनको पता नहीं चलता था। कभी कभी सड़क पर चलते चलते अचानक वो कीर्तन और नृत्य करने लग जाते थे, बहुत ही अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से कीर्तन करने लगते। कभी कभी अचानक जोर जोर से भावावेश में आकर हंसने लग जाते, तो कभी कभी उनके आंखों से अचानक अश्रु धारा बहने लग जाती। कभी कभी भगवान का नाम जाप करते कूद जाते। कभी कभी उनके शरीर के ऊपर कपड़े भी गिर जाते, उनको पता भी नहीं चलता था, इतने भाव में होते थे। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, भगवान के प्रेमा भक्ति में मग्न होते हुए। तो ईश्वर माधवेंद्रपुरी ये देख रहे थे कि सभी जगह लोगों को कृष्ण के लीलाओं का वर्णन सुनने में कोई आकर्षण नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, जन्माष्टमी इत्यादि महोत्सव मनाने की इच्छा नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो वैष्णव हैं उनके बारे में भी उनको ज्ञान नहीं था। पहले जो प्रथा थी कि रात भर वैष्णव मिलकर कीर्तन किया करते थे, ये तो बंद हो ही चुके थे, लेकिन कृष्ण कीर्तन कहीं भी नहीं हो रहा था। ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में धर्म की भावना क्या थी कि काली या चंडी के बारे में वो लोग कुछ न कुछ तथाकथित भजन वगैरह किया करते थे, कुछ थोड़े अनुष्ठान किया करते थे और नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे, बड़े धूमधाम से, बहुत पैसे उसमें खर्च करते थे। और ऐसे ऐसे देवी देवता जिनका नाम भी शायद हम लोगों ने सुना नहीं होगा, आखिर हैं 33 कोटि। तो इस तरह से ऐसे ही कार्यों में लगे रहते थे। उनके हृदय में इंद्रतृप्त की भावना बड़ी तीव्र होती थी। इतना तथाकथित धर्म करने के बाद में भी उनके चरित्र में, स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग ऐसे भौतिकवाद में बढ़ते जा रहे थे और बनावटी एक धर्म बना लिया था उन्होंने। और केवल समाज के सामने मैं एक बहुत धार्मिक आदमी हूं ऐसा पेश करने में लोग बहुत आतुर थे। तो माधवेंद्रपुरी ने ये सब देखा, सोचा कि क्या किया जाए, अभी ऐसे लोगों के बीच में वैष्णव तो है ही नहीं, तो उन्होंने सोचा तो कम से कम सन्यासियों का संग करूं। लेकिन बड़े निराश हुए, देखा कि जो सन्यासी भी हैं उस समय वो सब भी निराकारवाद में, मायावाद में रुचि लेते थे, भगवान का निराकार स्वरूप के बारे में वो चिंतन मनन करते रहते थे। तो सोचने लगे माधवेंद्रपुरी कि इतने सारे विद्वान हैं, इतने सारे योगी हैं, इतने सारे ऋषि मुनि हैं, वैरागी हैं, यहां तक कि सन्यासी भी हैं, कोई भी इनमें से कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं ले रहा है। केवल ये सारे लोग जो हैं अपने विद्वत्ता को प्रदर्शित करने के लिए तर्क वितर्क में लगे हुए हैं, वाद विवाद में लगे हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, मैं इनको हरा सकता हूं, तर्क में यही चल रहा था उनके बीच में। यहां तक कि जो सन्यासी भी थे, ये सारे वर्ग के लोग थे, यतिगण भी थे, वो भगवान के स्वरूप को भी नकारने लगे, भगवान के अर्चा विग्रह को भी नकारने लगे। तो इस तरह से कोई भी समाज को मार्गदर्शन नहीं करता था कि तुम भगवान की सेवा करो। भगवान के प्रति सेवा की भावना तो प्राय नष्ट हो चुकी थी। तो माधवेंद्रपुरी सोचने लगे, ऐसे लोगों के बीच में अब वैष्णव पाना तो बड़ा कठिन है, जब ये लोगों को मालूम ही नहीं कि वैष्णव कौन है, क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण कीर्तन क्या है, वैष्णव कीर्तन क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, भावावेश में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में वैष्णव पाना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि मुझे ऐसे समाज में रहकर कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा ये है कि मैं जंगल में चले जाऊं। जंगल में रहकर कम से कम अकेला रहूंगा, अभक्तों का संग तो नहीं करना पड़ेगा और मैं चुपचाप अपनी भक्ति कर सकता हूं। यहां समाज में रहते हुए भक्ति करना कठिन है क्योंकि ये लोग बीच बीच में आ जाते हैं और शुद्ध भक्ति के भाव है वो नष्ट हो जाते हैं, भक्ति का आनंद किरकिरा हो जाता है पूरा। तो जैसे जिस समय माधवेंद्रपुरी ऐसे सोच रहे थे, ठीक उस समय उनकी मुलाकात अद्वैत आचार्य से हुई। और ये तो भगवान की योजना से हुई मुलाकात, और अद्वैत आचार्य भी ठीक इसी तरह से सोच रहे थे। अद्वैत आचार्य भी महाभागवत भक्त थे और शुद्ध भक्त यही चाहता है कि दूसरे सब कृष्ण भक्त हो जाएं, और जब वो देखते हैं कि दूसरे कृष्ण भक्त नहीं हैं तो वो थोड़े दुखी हो जाते हैं, पर दुख दुखी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक लोग कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेंगे वो दुखी रहेंगे। जिस तरह से प्रहलाद भी श्रीमद् भागवत में बताते हैं, शोचे तत विमुख चेत स इंद्रियार्थ माया सुखाय भर उद्वहतो विमूढ़ान, कि हे प्रभु मैं इन मूढ़ लोगों के लिए संसार में रहना चाहता हूं, इन लोगों के लिए मैं शोक कर रहा हूं। शोचे ततो, उन लोगों के लिए शोक कर रहा हूं जो भगवान से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं और जो केवल झूठे झूठे जिम्मेदारियों को निभाकर अपना मनुष्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से सब शुद्ध भक्त सोचते हैं कि क्यों ये समाज के लोग कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं इसको देखकर, इस अवस्था को देखकर। और जिस तरह से माधवेंद्रपुरी सोच रहे थे उसी तरह से अद्वैत आचार्य भी सोच रहे थे कि अभी इसका उपाय केवल एक है कि जब तक कि साक्षात स्वयं श्री कृष्ण यह अवतार नहीं लेंगे तब तक इस अवस्था के लिए कोई समाधान, कोई और उपाय नहीं है, इस समस्या का समाधान और कोई नहीं करा सकता, केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य देख रहे थे कि मैं यहां गृहस्थ हूं तो मुझे इन सबके बीच में रहना पड़ता है, क्या दशा है इनकी। तो इस तरह से ऐसे ही अवस्था में दोनों इन महाभागवतों की मुलाकात हुई, और अद्वैत आचार्य ने जब उनको देखा, माधवेंद्रपुरी को, तो तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके जब माधवेंद्रपुरी ने देखा कि अद्वैत आचार्य तुरंत पहचान गए उनको, जैसे कल चर्चा परसों चर्चा कर रहे थे एक शुद्ध भक्त दूसरे को पहचानता है, तो माधवेंद्रपुरी ने उनको उठाया और आलिंगन किया बड़े जोर से और अपने अश्रुधारा से उनको पूरा गीला कर दिया, और इस तरह से दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के आलिंगन में रहे और फिर कृष्ण भक्ति के रस में बिल्कुल झूमते रहे और आपस में कृष्ण कथा की लहरें बहने लगी आपस में। और जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि माधवेंद्रपुरी के शरीर में किस तरह से दिव्य लक्षण, भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो वो भी समझ गए, इसलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली और उनके शिष्य बने, और फिर माधवेंद्रपुरी आगे चले। तो इस तरह से इस घटना के बाद में अद्वैत आचार्य हर साल माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव तिथि को बड़े धूमधाम से मनाते थे। तो ऐसे ही एक आविर्भाव दिवस का महोत्सव जो है उसका वर्णन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया हुआ था, तो बहुत साल बीत गए थे जबकि अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी। उस घटना के बाद, उस दिवस के बाद कई साल बीत गए थे और चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास भी लिया था, और उस समय वो शांतिपुर में आए थे जहां अद्वैत आचार्य निवास करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव दिवस को मनाना चाह रहे हैं तो जगह जगह से भक्त आने लगे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि माधवेंद्रपुरी कितने महान भक्त हैं, तो उनकी आविर्भाव दिवस का महोत्सव है तो सभी लोग आए, और अद्वैत आचार्य के उत्साह को देखकर सभी लोग उत्साहित हुए। क्योंकि भक्त ऐसे होते हैं जब दूसरे का उत्साह देखते हैं खुद उत्साहित हो जाते हैं। इसलिए अगर दूसरे भक्तों को उत्साहित करना है तो हमें उत्साहित होना चाहिए। अगर हम निराश रहेंगे भक्ति में, उत्साह बिल्कुल निरुत्साही रहेंगे, तो ये ऐसा है कि जैसे बीमारी फैलती है उत्साह या निरुत्साह भी फैल जाता है। अगर हम उदास छोटा चेहरा लेके बैठ जाते हैं, जप में रुचि नहीं है, तो दूसरे लोग भी सोचेंगे अरे क्या जप में हमें भी रुचि नहीं आ रही। लेकिन अगर हम उत्साह से कीर्तन करेंगे, हम भी उत्साह से श्रवण करेंगे, तो दूसरे लोग भी उत्साहित हो जाते हैं। हम अगर क्लास अच्छी तरह से श्रवण कर रहे हैं उत्साह से, तो दूसरे लोग भी देखते हैं, सब लोग उत्साह से सुन रहे हैं, हम भी सुने। लेकिन कोई क्लास में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, सो रहे हैं, तो दूसरे लोग भी सोचते हैं धीरे 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 से हम भी सो जाए। तो सारे लोगों ने अद्वैत आचार्य के उत्साह को देखा तो वो उनको भी प्रेरणा आई, चलो हम भी उत्साह से मनाएं। और सुंदर ढंग से चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि किस तरह से लोग सामने आए सेवा करने के लिए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहां थे, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं वैष्णवों की पूजा करूंगा और उनकी सेवा करूंगा। सची माता ने कहा, वो भी वहां आई थी नवद्वीप से सुनकर कि उनके पुत्र भी वहां पे आए हुए हैं, महाप्रभु भी आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं रसोई का डिपार्टमेंट संभालूंगी, सारे व्यंजन जो हैं पदार्थ बनाने हैं रसोई घर में मैं बनाने वाली हूं, और सारे गृहिणी जो हैं जो आसपास में रहती थी वो भी उनकी सहायता के लिए आ गईं, अपने घर का सारा काम छोड़कर आ गईं वहां पर उत्सव में भाग लेने के लिए। सब लोग इधर उधर मना रहे थे, कोई ये व्यंजन बना रहे हैं, कोई वो बना रहे हैं, कितने अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए सारे गृहिणियां आ गई उधर। और कोई भक्त कहने लगे मैं चंदन घिसूंगा, कोई कहने लगे मैं फूल तोड़कर लाऊंगा, फूलों को साफ करूंगा, फूलों को धोऊंगा, किसी ने कहा मैं कीर्तन करूंगा, किसी ने कहा मैं बाजा बजाऊंगा, किसी ने कहा मैं शंख बजाऊंगा, किसी ने कहा मैं जाकर सफाई कराऊंगा। इस तरह से हर एक भक्त जो है वो किसी न किसी सेवा में लग गया। और सब लोग सेवा करते समय जो भी सेवा में क्यों ना हो हरी हरी बोल जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे, और कोई भी एक भक्त हरी हरी बोलता तो दूसरे सारे भक्त हरी हरी बोलते। इस तरह से हरी हरी शब्दों को शब्द जो है वो गूंजते रहते थे उस सारे इलाके में। तो चैतन्य महाप्रभु वहां थे तो उन्होंने देखा कि कितने उत्साह से धूमधाम से माधवेंद्र पुरीपाद के आविर्भाव दिवस को मनाया जा रहा है। तो इधर उधर हर जगह जाकर देख रहे थे कि कैसे सेवा चल रही है। और अद्वैत आचार्य का घर बड़ा था, उस जमाने में गांव में तो बड़े घर होते थे, आजकल के फ्लैट जैसे नहीं अपार्टमेंट, तो उनमें कई कमरे होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैत आचार्य के घर में अलग अलग कमरों में गए तो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हुए? क्योंकि देख रहे थे कि हर एक कमरा भरा हुआ पड़ा है। पहले देखा कि कई कमरे केवल अनाज से भरे हुए हैं, कमरे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कमरे के जो थैलियां हैं भरे पड़े हैं ऊपर तक। और कमरे में गए आगे, कई कमरे ऐसे हैं जिसमें तरकारी सब्जियां भरे पड़े हैं अलग अलग तरह के, किसी में पालक, किसी में आलू, किसी में मेथी, किसी में ये, किसी में वो, किसी में केले का जो पेड़ का जो के डाली होती है वो भरे पड़े हैं, केले के फूल पड़े हैं। इस तरह से अलग अलग कितने कमरों में केवल सब्जियां पड़े हैं। और आगे चल के देखा और आश्चर्यचकित हो गए, कितने सारे कमरों में दूध पड़ा है, दही है, और फिर दूध के अलग अलग तरह के से बनाए हुए पदार्थ हैं। और गए तो और कमरों में केवल कपड़े पड़े हैं, अलग अलग तरह के शानदार कपड़े पड़े हैं जो कि उस उत्सव में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते जाते, जितने आगे बढ़ते जाते थे उतने आश्चर्यचकित होने लगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की, ये जो मैं अभी देख रहा हूं इतना ऐश्वर्य, ये ऐसी जो व्यवस्था है ये एक आदमी नहीं कर सकता, ये अलौकिक कार्य है। इससे मैं जान सकता हूं कि ये अद्वैत आचार्य साक्षात सदाशिव के अवतार है। शिवजी के अलावा और कौन ऐसे अद्भुत कार्य संपन्न करके प्रदर्शित कर सकता है? ऐसा ऐश्वर्य भला किसका हो सकता है? ये साक्षात शिवजी है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य का गुणगान करना शुरू कर दिया और फिर जगह जगह जाकर देखने लगे। और जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के इलाके में आ गए तो वहां सभी लोगों को और उत्साह आ गया, तो सभी लोग धुआंधार कीर्तन करने लगे और नित्यानंद प्रभु तो छोटे बालक की तरह ही हु करते हंसते हुए ऊपर कूद रहे, कभी नाच रहे, मानो कि एक छोटे बालक है। और उधर अद्वैत आचार्य भी भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे हैं, सारे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु आए तो उनको बीच में रखकर सारे लोग कीर्तन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे। तो जिस तरह से वृंदावन में ग्वाल बाल कृष्ण भगवान को बीच में रख के बैठते थे और खाते थे, और रथ यात्रा के समय जो वैष्णव थे वो चैतन्य महाप्रभु को बीच में रख के नृत्य करते थे, ठीक उसी तरह से ऐसे ही बाजा बजने लगे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बीच में रखा और नृत्य कीर्तन चालू हुआ। सुबह चालू हुआ तो रात सारा दिन भर कीर्तन चला। हम लोग आधा घंटा एक घंटा कीर्तन करते हैं, थक जाते हैं, हृदय हृदय में सोचते हैं कब ये बंद करेंगे, या थक जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के समय जो कीर्तन होते थे तो चल रात रात भर दिन भर रात भर चलते रहते थे। वक्रेश्वर पंडित नाम के भक्त थे, इनका वर्णन आता है किसी दूसरे संदर्भ में कि उन्होंने लगातार 70 घंटे नृत्य किया बिना रोके, बिना खाए बिना पिए 70 घंटे केवल नृत्य करते रहे कीर्तन में। ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु के भक्त। तो खैर दिन भर ऐसा चलता गया और हरि नाम के दिव्य ध्वनि जो है गूंजती रही और आखिर में कीर्तन समाप्त हुआ और फिर सारे भक्त महाप्रसाद के दावत को फीस्ट को स्वीकार करने के लिए बैठे। और बैठे तो क्या देखते हैं, शची माता का कमाल सामने देख रहे हैं। सची माता ने चावल की पदार्थ कितने सारे बनाए थे कि उनकी गिनती नहीं, और फिर इसके ऊपर सब्जियां शाक अलग अलग तरह के व्यंजन, जैसे देखने लगे सारे भक्त लोग चकाचौंध रह गए बिल्कुल देखने के, इतनी सारी वैरायटी इतनी विविधता और फिर इतने सारे मिठाइयां इतने सारे दूध के पदार्थ, ये सब कैसे हो सकता है। तो सब लोग बैठे और अच्छी तरह से प्रसाद का सेवन करने लगे और महाप्रभु कहने लगे कितना बढ़िया प्रसाद है, उसकी प्रशंसा करने लगे। और जैसे जैसे प्रसाद खाते तो माधवेंद्र पुरी का गुणगान करने लगे। और वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट लगा कहना मुश्किल है। एक बार मुंह में प्रसाद डालते थे उसका सेवन करते थे तो उसका स्वाद आया, और बीच बीच में माधवेंद्र पुरी का गुणगान करते थे तो उसका स्वाद भी आया। तो इन दोनों चीजों में कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट उनको लगता था वो कहना मुश्किल है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं। तो इस तरह से खाते खाते प्रसाद का सेवन करते करते भक्त लोग माधवेंद्र पुरी के गुणगान करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिसने आज के दावत में प्रसाद खाया है और जिसने आज माधवेंद्र पुरी का स्मरण किया है और गुणगान किया है उसे अवश्य शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो कृष्ण भक्ति दिव्य है, कृष्ण भक्ति अलौकिक है, इसलिए इसमें समय या जगह का बंधन नहीं होता। तो जिस तरह से वहां गुणगान चल रहा था माधवेंद्र पुरी का, श्रवण कीर्तन चल रहा था, यहां भी चल रहा है, हम सब मिलकर भी माधवेंद्र पुरी का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए जो माधवेंद्र पुरी का गुणगान इस तरह से करेंगे, उनका आविर्भाव दिवस तो कल है, हम आज ऐसे मना रहे हैं, तो सबको कृष्ण प्रेम प्राप्ति अवश्य हो सकती है। तो यह चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है। तो इस तरह से बड़े धूमधाम से अद्वैत आचार्य ने और अन्य वैष्णव भक्तों ने माधवेंद्र पुरी की आविर्भाव दिवस मनाई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अद्वैत आचार्य कितना प्रेम करते थे माधवेंद्र पुरी से और माधवेंद्र पुरी भी उनसे कितना प्रेम करते थे। तो आदर्श भक्त शिष्य कैसे होना चाहिए अद्वैत आचार्य ने दिखाया। लेकिन सारे शिष्य माधवेंद्र पुरी के ऐसे नहीं थे, और एक भी एक शिष्य थे जिनका नाम था रामचंद्र पुरी, वो अलग प्रकार के शिष्य थे। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये दो विपरीत तरह के शिष्य रहे, रामचंद्रपुरी और दूसरे ईश्वरपुरी। और माधवेंद्र पुरी ने दोनों से अलग तरह से व्यवहार किया। उन्होंने रामचंद्र प्रभु रामचंद्र पुरी को टोका, उनके प्रति उनकी भर्त्सना की, उपेक्षा की उनके प्रति, और उनकी एक तरह की गति हुई। और ईश्वरपुरी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके ऊपर बहुत प्रेम बरसाया, कृपा की उनके ऊपर, तो ईश्वरपुरी की गति दूसरी ही हो गई। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी एक महाभागवत भक्त हैं, और उन्होंने अपने व्यवहार से साबित किया कि किस तरह से अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों के प्रति अलग अलग व्यवहार करने से कैसे उनकी अलग अलग गति प्राप्त होती है। तो शुद्ध भक्त ने अपने व्यवहार से यह साबित कर दिखाया। तो इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या बैकग्राउंड है इसका, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि रामचंद्र पुरी का स्वभाव ऐसा था कि वो निंदाकारी थे, हमेशा निंदा करने में रुचि रखते थे, और वैसे निराकार में भी थोड़ा बहुत वो स्वाद रखते थे। हालांकि उन्होंने माधवेंद्र पुरी से दीक्षा ली थी जो कि परम वैष्णव थे। तो बताया जाता है कि एक बार रामचंद्र पुरी जगन्नाथ पुरी में आए, और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, वो वहां पर रहते थे अपने भक्तों के संग में। तो परमानंद पुरी और चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे हुए थे, तो वहां रामचंद्र पुरी सामने आए। परमानंद पुरी की चर्चा भी हम कल कर रहे थे। तो दोनों ने जब रामचंद्र पुरी को देखा तो तुरंत दोनों ने दंडवत किया। चैतन्य महाप्रभु ने तो किया ही, लेकिन परमानंद पुरी ने भी किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये मेरे गुरु भाई हैं, ये भी सन्यासी हैं, तो उन्होंने भी दंडवत किया। तो रामचंद्र पुरी ने परमानंद पुरी से आलिंगन किया जोर से, और फिर चैतन्य महाप्रभु की आलिंगन किया और कृष्ण का स्मरण किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण है। और फिर दोनों ने तीनों बैठे और कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे थे। उधर चैतन्य महाप्रभु के और एक भक्त जगदानंद पंडित थे, तो उन्होंने रामचंद्र पुरी को निमंत्रण दिया कि आकर आप मेरे साथ में मेरे घर में कृपा करके जगन्नाथ के प्रसाद का सेवन कीजिए। तो रामचंद्र पुरी ने कहा ठीक है। तो रामचंद्र पुरी ने अच्छी तरह से प्रसाद पा लिया और फिर जगदानंद पंडित को कहा कि अभी तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हें खिलाता हूं, बैठो बैठो। जगदानंद पंडित कहने लगे नहीं 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 बैठो बैठो बैठो, उनको बिठाया और खिलाने लगे, और जितना वो खाते उतना ज्यादा और देते, जरूरत से ज्यादा जबरदस्ती उनको बहुत ज्यादा खिला दिया। जगदानंद पंडित बेचारे खाना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने गुरु के गुरु भाई हैं इसलिए ना नहीं कर सके, सन्यासी हैं, इतने वरिष्ठ हैं, वो जबरदस्ती खिला रहे हैं, तो खा लिया बेचारे। और उसके बाद में रामचंद्रपुरी उनको टोकने लगे, मैंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और अनुयायी बहुत ज्यादा खाते हैं, और आज मैंने प्रत्यक्ष इसको देख लिया है। अब बेचारे जगदानंद पंडित क्या कहते, जबरदस्ती उनको खिलाया, उसके ऊपर टोका उनको, वो कुछ कह नहीं पाए तो चुपचाप रह गए। तो इस तरह से रामचंद्र पुरी इसी चीज में रुचि लेते थे, सब जगह जाते थे इधर उधर, ये देखते थे कि कौन कितना खाता है, क्या खा रहा है, सबके दिनचर्या में बहुत ज्यादा रुचि लेते थे कि कौन कैसे जीता है। और जहां तक उनका खुद का सवाल था, उनका कोई नियम नहीं था, जैसे सन्यासी को इधर उधर जाना है वैसे वो जाते थे, कभी इनके यहां खा लिया, कभी उनके यहां खा लिया, और कभी कभी कई बार बिना निमंत्रण के भी किसी के घर में चले जाते और वहां भी खा लेते। इनके प्रति दोष मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है। तो इसलिए बहुत गहराई से परीक्षा करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु कितना सोते हैं, कहां सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किधर जाते हैं, क्या करते हैं, गहराई से देखने लगे। और आखिर में उनको एक पॉइंट मिल गया, कहने लगे अरे देखो ये सन्यासी हैं, लेकिन कितने मीठे वस्तु खाते हैं देखो। सन्यासी अगर मीठे वस्तु खाएगा तो उसकी इंद्रियां वश में कैसे हो सकती हैं? लेकिन ये उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं कहा था, लेकिन ये अफवाहें फैल रही थी सब जगह, तो चैतन्य महाप्रभु के कानों तक पहुंच गए थे कि रामचंद्रपुरी ऐसे बोल रहे हैं उनके बारे में। लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना, सोचा ये मेरे वरिष्ठ हैं, और जब भी रामचंद्रपुरी उनके सामने आते थे तो उनके सामने दंडवत करते थे, उनको पूरा आदर सत्कार देते थे, सम्मान देते थे। और एक बार रामचंद्रपुरी जब चैतन्य महाप्रभु के कुटिया में आए, उनके कमरे में आए थे गंभीरा में, तो उन्होंने देखा कि थोड़ी चींटियां चल रही थी। तो उन्होंने कहा, हाँ ये देखो सन्यासी के कमरे में चींटियां, इसका मतलब है कि कल रात को ये सन्यासी छुप छुप के कोई मिठाइयां खा रहे थे। देखो है सन्यासी, सन्यासी अगर बहुत ज्यादा मीठा खाएगा, ज्यादा खाएगा वो, तो सन्यास धर्म उसका नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सन्यास धर्म का सार है वैराग्य, और जो वैरागी होता है ऐसे मिठाइयां खाते रहेगा, मीठी चीजें खाते रहेगा, तो कैसे सन्यासी बना रहेगा। और इस तरह से रामचंद्रपुरी वहां से चले गए। अब देखिए चींटियां जो हैं वो इधर रहती हैं, उधर रहती हैं, सब जगह रहती हैं, चींटियां तो किधर भी जाती हैं। तो ये सही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु छुप छुप के मिठाई खा रहे थे, लेकिन रामचंद्रपुरी ऐसे बोलकर चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को बहुत बहुत गंभीरता से लिया। वैसे चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग भक्त लोग निमंत्रण देते थे, हर रोज दोपहर के समय वो अलग अलग भक्तों के घर में जाके प्रसाद लेते थे, जगन्नाथ का प्रसाद। तो उस समय पण पण होता था, वो उनके पैसे होते थे, एक चार पण का वो जगन्नाथ प्रसाद लेते थे, चार पण से जो प्रसाद खरीद सकते थे उतना खाते थे। एक पण जो होता है वो 80 कौड़ी होती थी, कौड़ी मतलब वो जो समंदर में कॉन्शल मिलते हैं, वो भी उनकी पैसे होते थे वो। तो एक पण 80 कौड़ी, चार पण अर्थात 320 कौड़ी का प्रसाद वो लेते थे, जितना वो प्रसाद उससे खरीद सकते थे उतना लेते थे। तो फिर उन्होंने गोविंद से कहा कि आज से केवल मैं 160 कौड़ी का प्रसाद लूंगा, इसका आधा लूंगा बस। और सभी ने ये सुना तो हाहाकार मच गया सारे भक्त समाज में कि अरे ये क्या हो गया। और वैसे भी 320 कौड़ी का प्रसाद जब आता था उनके पास में तो अकेले चैतन्य महाप्रभु नहीं खाते थे, गोविंद को खिलाते थे और काशीश्वर मिश्र को खिलाते थे जिनके यहां वो ठहरे हुए थे। तो तीन लोग ये प्रसाद को लेते थे। अभी चैतन्य महाप्रभु ने उसको आधा कर दिया, तो वो उस आधे से भी थोड़ा लेते थे और बाकी काशीश्वर और गोविंद को दे देते थे। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने कुछ कहा नहीं, वो संतुष्ट रहे, लेकिन उन्होंने गोविंद को कहा कि अभी आप दोनों जाकर कहीं भिक्षा मांग के आपका पेट भरवा सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि इतना से नहीं होगा। तो सब भक्तों ने सुना तो बड़े निराश हो गए, उन्होंने भी अपना खाना आधा में काट दिया। और एक बार एक ब्राह्मण के घर में जाना था प्रसाद के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अन्न केवल 160 कौड़ी का मैं लूंगा और 5 गंडा का मैं सब्जियां लूंगा। 5 गंडा मतलब 1 गंडा मतलब 5 कौड़ी, तो इतना ही मैं सब्जी लूंगा। तो ब्राह्मण ने वो जब सुना तो अपने कपाल पे हाथ करके हाय 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 कहने लगा कि क्या हुआ। तो इस तरह से सारे भक्त बड़े निराश हुए थे कि क्या किया जाए। और उसके बाद में रामचंद्रपुरी फिर से चैतन्य महाप्रभु के पास में आए कि मैंने सुना है कि तुमने अभी खाना आधा कर दिया है, सन्यासी को शुष्क वैराग्य भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा वैराग्य अगर सन्यासी करेगा तो भी अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने भगवत गीता का श्लोक उनको सुनाया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो योगी होते हैं सन्यासी होते हैं उनको सब कुछ संतुलित उनके जीवन में होना चाहिए, आहार भी संतुलित होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए कम भी नहीं सोना चाहिए, सब कुछ संतुलन से होना चाहिए। पहले आप ज्यादा कर रहे थे अभी बहुत कम हो रहा है, ये भी ठीक नहीं है, ऐसे कहकर वो भी चले गए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वैसे के वैसे रहे। और उसके बाद में परमानंदपुरी उनके पास आए जो कि रामचंद्रपुरी के भाई थे, और वहां पर आकर उनसे कहने लगे आपके चरणों में एक विनती है। वो ये है, ये जो रामचंद्रपुरी है ये इनकी आदत ही ऐसी है, ये कहीं जाते हैं किसी को ज्यादा खिलाते हैं और फिर उनको डांटते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खाते हो। अभी जब से उन्होंने आपके प्रति गलतियां ढूंढने का प्रयास किया है तो तब से सारे भक्त लोगों में बहुत दुख फैल गया है, और इसलिए हम दुखी अवस्था में आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया जाता है, कृष्ण भगवान उद्धव को भागवत में बताते हैं कि व्यक्ति को न तो किसी की प्रशंसा करनी चाहिए और न किसी की निंदा करनी चाहिए, दोनों चीजें वर्जित हैं। लेकिन न्याय शास्त्र में बताया गया है कि जो किसी की निंदा नहीं कर, किसी का की प्रशंसा नहीं करना, इसको पूर्व विधि कहते हैं, और किसी की निंदा करना नहीं करना इसको परविधि कहते हैं। तो पूर्व परयोर मध्ये परयोर बलवान, तो ये दोनों विधियों में से ये जो परविधि है ये ज्यादा बलवान है। अर्थात पूर्व विधि क्या है कि किसी की प्रशंसा नहीं करना, परविधि क्या है किसी की निंदा नहीं करना। तो इन दोनों विधियों में से किसी की निंदा नहीं करना ये ज्यादा बलवान है। लेकिन ये रामचंद्रपुरी उल्टा कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा तो करते नहीं है, इस दृष्टि से ये आदेश का पालन करते हैं, लेकिन ये दूसरे आदेश का पालन नहीं करते, किसी को निंदा नहीं करना, निंदा करते रहते, इनका स्वभाव ही निंदा करना है। अभी मैं इनकी निंदा करना नहीं आया, लेकिन भक्त लोग दुखी हैं, इसलिए आपके सामने आके ये विनती कर रहा हूं कि आप कृपा करके जितना पहले खाते थे उतना खाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, रामचंद्रपुरी तो मेरे वरिष्ठ हैं और मेरे शुभ चिंतक हैं, और मैं सन्यासी हूं, वो जो कह रहे हैं वो तो सही है कि सन्यासी को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जितना शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उतना सन्यासी को खाना चाहिए, तो गलत कहां कहा उन्होंने, सही कहा। तो इस तरह से माधवेंद्र परमानंदपुरी भी निराश होकर चले गए, लेकिन भगवान की योजना से रामचंद्रपुरी ने सोचा कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, तो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। और जैसे निकल पड़े तो सारे भक्तों को लगा कि हमारे सर से एक भारी पत्थर जो बोझ है वो गिर पड़ा है, अभी हम मुक्त हो गए। तो चले गए, और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जैसे जितना वो पहले खाते थे उतना खाना शुरू कर दिया, और सबके घर में पहले जैसे होता था वैसे अलग अलग घरों में जाके फिर वो प्रसाद सेवन करने लगे। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं रामचंद्रपुरी के स्वभाव का। ये ऐसा स्वभाव क्यों हुआ उनका, क्यों इस तरह से वो निंदाकारी बने, इसके पीछे इतिहास है। क्या इतिहास है कि एक बार जब माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम दिनों में थे तो बहुत बीमार थे और प्राण छोड़ने की तैयारी थी, और उनकी सेवा ईश्वरपुरी कर रहे थे, उस समय रामचंद्रपुरी वहां पर आए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, पुरी गोसाई कोरे कृष्ण नाम संकीर्तन, मथुरा ना पाइनो कोरे कोरे न क्रंदन, कि पुरी गोसाई अर्थात माधवेंद्र पुरी गोसाई वो कृष्ण नाम का संकीर्तन करते रहते थे, मथुरा ना पाइनो कोरे न क्रंदन, तो मैंने मथुरा नहीं पाया, कृष्ण को नहीं पाया, ऐसे वो रोते थे। तो बीच बीच में नाम संकीर्तन करते थे, और संकीर्तन करते करते कभी शोक करते थे कि हाय मैं कृष्ण को नहीं पा सका, मथुरा को नहीं पा सका। तो उस समय रामचंद्रपुरी वहां आकर पहुंच गए, उन्होंने देखा कि अरे ये मेरे गुरु हैं और रो रहे हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उन्होंने वो कार्य किया जो कि किसी शिष्य को नहीं करना चाहिए। वो कहने लगे, तुम्ही पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण, भ्रमवित होना कैनो करह रोदन, अरे आप पूर्ण ब्रह्मानंद हैं तो आप ब्रह्म का स्मरण करो, निराकार ब्रह्म का स्मरण करो, आप ब्रह्मवित बनो, ब्रह्मवित होकर आप शांत रहो, आप रो क्यों रहे हैं, शोक क्यों कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, न शोचती जो ब्रह्मभूत अवस्था में होता है किसी का शोक नहीं करता, ना किसी के प्रति किसी की आकांक्षा नहीं रखता। तो ये रामचंद्रपुरी, उनके हृदय में निराकारवाद छुपा हुआ था, भरा हुआ था, इसलिए वो भक्ति के गुण तत्वों को नहीं जान सकते थे। वो सोचते थे कि माधवेंद्रपुरी एक साधारण भौतिक व्यक्ति की तरह शोक कर रहे हैं, इसलिए पहचान नहीं पाया कि अपने गुरु कितने ऊंचे हैं, कितने ऊपर स्तर में हैं। वास्तव में माधवेंद्रपुरी ने शुद्ध कृष्ण प्रेम के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिया था, और ऐसे अवस्था में विप्रलंब भाव में वो गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, उसी प्रेम को वो व्यक्त कर रहे थे। जिस तरह से गोपियां शोक करती थी दिव्य विरह प्रेम में कृष्ण के प्रति, वही प्रेम माधवेंद्रपुरी का था। लेकिन रामचंद्रपुरी इस तत्व को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, इसलिए अपने गुरु को भी पहचान नहीं पाए और उनको उपदेश देने लगे कि आप निराकार ब्रह्म का स्मरण करो और रो नहीं। वास्तव में ऐसे ऊंचे प्रेम में जब भक्त तथाकथित शोक करता है तो यह साधारण शोक नहीं समझना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर में, शुद्ध भक्ति के स्तर में और एक भौतिकवादी व्यक्ति के स्तर में बहुत अंतर होता है। हम जब यहां शोक करते हैं या हम जब प्रसन्न होते हैं तो दोनों ही वास्तव में एक ही हैं। यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि संसार का सुख जो है वो दुख का कारण है और इससे दुख ही उत्पन्न होता है। अर्थात संसार का सुख दुख का एक दूसरा नाम है। आप दुख कहें या सुख कहें, दोनों एक ही बात है भौतिक स्तर के ऊपर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, शुद्ध भक्ति की अवस्था में केवल आनंद ही आनंद है। जिस तरह से भौतिक स्तर पर केवल दुख ही दुख है, उस तरह से शुद्ध भक्ति के स्तर में आनंद ही आनंद है। और ऐसे आनंद की स्थिति में अगर भक्त शोक भी कर रहा हो विरह में, तो वो शोक भी आनंद ही है। जो गोपियां शोक करती थीं कृष्ण भगवान के लिए और जो दुख को व्यक्त करती थीं, तो उस दुख में भी उनको एक ऊंचे दिव्य आनंद की अनुभूति थी। तो ऐसी जो भावनाएं हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते, उनकी कल्पना के, उनके समझ के बाहर है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो कि केवल एक शुद्ध भक्त के चरण कमलों में आश्रय लेकर, नम्रता से उनकी सेवा करके प्राप्त हो सकता है। तो माधवेंद्रपुरी ने कभी वैष्णवों की सेवा नहीं की थी, इसलिए वो समझ नहीं पाए। तो इसलिए उनको बोल रहे थे, क्यानो कौरह रोदन, आप रोते क्यों हैं? तो माधवेंद्रपुरी ने जब यह सुन लिया, सुनी माधवेंद्रपुरी मने क्रोध उपजिल, दूरे दूरे पापिष्ट कोरी भर्सना कोरिल। तो ये सुनकर माधवेंद्रपुरी के मन में क्रोध आया, दूर दूर पापिष्ट, उसको भर्सना किया उसको, अरे दूर हो जाओ पापी, मेरे नजर से दूर हो जाओ। तो बड़े क्रोधित हुए। हालांकि शरीर बड़ा कमजोर था, शरीर में ताकत कम थी, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें उन्होंने जब सुनी तो उनको सहन नहीं हुआ। कृष्ण न पाइनु न पाइनु मथुरा, वो बोले कि मैंने कृष्ण नहीं पाया, मथुरा नहीं पाया, और यही दुखे उ मरु और दुख दीते दीते आयल ज्वाला, ये जो मेरा एक मूर्ख शिष्य है ये मुझे इस अंतिम क्षण में भी दुख देने के लिए आया है। वैसे ही मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे कृष्ण नहीं प्राप्त हुआ है, मुझे मथुरा नहीं प्राप्त हुआ, और उसके बावजूद ये मूर्ख आके मुझे ब्रह्म उपदेश दे रहा है। तो उन्होंने बताया कि मुझे मुख मत दिखाओ, जाओ यथी तथी, तोर मुखे देखे मोइले मोरे होबे असद गति। मरते समय अगर मैंने तुम्हारा मुख देख लिया तो मेरी असद गति हो जाएगी, तो चले जाओ यहां से, मेरे सामने मत आना, तुम जाओ यथी तथी, इधर उधर कहीं जाना तुम चले जाओ। और फिर वो शोक करने लगे कि मुझे मथुरा नहीं मिला, कृष्ण नहीं मिला, और ये मूर्ख आके मुझे ब्रह्म उपदेश दे रहा है, निराकार ब्रह्म का स्मरण करो। इस तरह से माधवेंद्रपुरी क्रोधित अवस्था में उन्होंने रामचंद्रपुरी को टोका और फिर रामचंद्रपुरी वहां से निकल गए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि क्योंकि माधवेंद्रपुरी के हाथों से इस तरह की उपेक्षा हुई रामचंद्रपुरी की, भर्त्सना किया, क्रोधित हुए, इसलिए रामचंद्रपुरी के हृदय में जो भी थोड़ी बहुत भक्ति भावना भी थी वो नष्ट हो गई और वो शुष्क ज्ञानी बन गए, सूखे सूखे ज्ञान का अनुशीलन करने लगे। और इसलिए उनके हृदय में जो वैष्णव निंदा का बीज है वो और भी बढ़ने लगा, और इसलिए वो आगे चल के निंदाकार बने, और यहां तक कि निंदा इतनी करने लगे कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे उनकी भी निंदा करने लगे। तो कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि जो महान वैष्णव के प्रति सही व्यवहार नहीं करता है, उनके भर्त्सना का पात्र हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति आगे चल के भगवान के प्रति भी अपराध करता है। और ये सही है, एक बार किसी व्यक्ति के मन में एक निंदा करने की आदत बन जाती है तो पहले अपने आसपास में जो है उनकी निंदा करता है, फिर आगे बढ़ते 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 वो भगवान तक भी पहुंच जाता है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत होशियार रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम दूसरे वैष्णवों की निंदा न करें, भले वो साधारण से साधारण भक्त क्यों ना हो, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक बार ही निंदा की आदत बन जाती है तो हम सोचते हैं कि साधारण भक्तों से भी और हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको भी करें, फिर और वरिष्ठ, फिर और वरिष्ठ, और फिर आगे चल के ऐसा दिन आएगा कि हम कृष्ण के प्रति ही निंदा करेंगे और कृष्ण के चरण कमलों को भी छोड़ देंगे। तो माधवेंद्र पुरी ने इस व्यवहार से सिखलाया कि किस तरह से कोई व्यक्ति महाभागवत के प्रति या किसी वैष्णव के प्रति सही व्यवहार नहीं करता है तो उसकी क्या गति हो जाती है। और दूसरी ओर ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी की बहुत हृदय से सेवा करते रहे। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और बहुत बीमार हो जाता है, मृत्यु के शैया पर लेटा हुआ होता है, तो सारे कार्य उसके करने पड़ते हैं, किसी दूसरे को आकर करने पड़ते हैं। तो ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी के शरीर से मलमूत्र भी स्वच्छ किया, उनको खिलाया पिलाया, उनके शरीर की सेवा की और साथ साथ उनकी आत्मा की सेवा भी की। हमेशा उनके साथ में बैठकर कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे, और इस तरह से उन्होंने माधवेंद्रपुरी को कृष्ण का स्मरण करने के लिए सहायता किया। और माधवेंद्रपुरी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कृष्ण प्रेम धन तुम्हें प्राप्त हो जाए और तुम बहुत धनी हो जाओ कृष्ण प्रेम के धन में। और ये आशीर्वाद प्राप्त होकर ईश्वरपुरी आगे चल के कृष्ण प्रेम के एक सागर बन गए। तो देखिए, तो कविराज गोस्वामी समझाते हैं, तो देखिए दो अलग गति माधवेंद्रपुरी ने किस तरह से अपने व्यवहार से सिखलाया सारे जगत को कि किस अलग अलग गति महाभागवत के प्रति अलग तरह से व्यवहार करने से किस तरह से अलग अलग गतियां प्राप्त होती हैं। और अंतिम क्षणों में माधवेंद्रपुरी ने वही एक प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण करके अपने प्राण को त्याग दिया। कौन सा है वो प्रसिद्ध श्लोक, किसी को याद है? कल चर्चा कर रहे थे हम, परसों, वही श्लोक जिसका गुणगान चैतन्य महाप्रभु करते थे, जिसका तात्पर्य केवल तीन लोग जानते थे। कौन तीन? श्रीमती राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्रपुरी। आई दीन दयार्द्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वद अलोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोम्यहम्। हे मथुरा नाथ, हे दीन दयाल, जब से आपका दर्शन नहीं हुआ है तो मेरा हृदय टूट चुका है, दुख के मारे बहुत विचलित हो गया है और मैं आपको देख नहीं सकता हूं, और ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं। ये प्रार्थना जो विप्रलंब सेवा में माधुरी भाव में गोपियों के पद चिन्हों में चलती हुई जो माधवेंद्रपुरी ने ये प्रार्थना की थी, वो बार बार श्लोक का उच्चारण करते थे, तो अपने अंतिम क्षण में भी माधवेंद्रपुरी ने यही श्लोक का उच्चारण करके अपना प्राण त्याग दिया और फिर भगवान के धाम में लौटकर चले गए। तो माधवेंद्रपुरी ने अपने जीते जी भी इतने सारे उपदेश दिए सारे जगत के लिए, कृष्ण प्रेम का उपदेश दिया कि कृष्ण प्रेम का बीज सारे विश्व में उन्होंने बो दिया, अपने जीवन से भी सिखाया कि महाभागवत कैसे होते हैं, कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए, कितने सारे उपदेश दिए अपने व्यवहार से, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण जो उपदेश था वो उनके अंतिम क्षण का उपदेश था, जिस तरह से उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, यह सबसे महत्वपूर्ण उनका उपदेश था। जिस तरह से प्रभुपाद ने भी ऐसे ही सिखलाया, शुद्ध भक्त जीते जी हमें सिखलाते हैं और मरते हुए हमें सिखलाते हैं, कैसे जीना है सिखलाते हैं, कैसे मरना है वो भी सिखलाते हैं, जैसे प्रभुपाद ने सिखलाया। तो माधवेंद्र पुरी ने हमें यह सिखलाया कि कृष्ण का स्मरण करते हुए कैसे हमें प्राण को त्यागना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है हे अर्जुन, वो अवश्य मुझे प्राप्त करता है, निस्संदेह इस सत्य को जान लो। तो माधवेंद्र पुरी ने कृष्ण का स्मरण करते हुए प्राण को त्यागा, और वैसे भी जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, वो तो भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, तो गोलोक वृंदावन लौट के चले गए। और इसके बाद में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी का नाम हमेशा गूंजता रहेगा, क्योंकि मूल गौड़ी वैष्णव परंपरा के शुरुआत करने वाले माधवेंद्र पुरी थे। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण के अवतार है, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको सदाशिव या शिव जी का ऐसा क्या कि दोनों के अवतार है,
इसके लिए थोड़ा और गहराई में बताना होगा, लेकिन आज संभव नहीं होगा। महाविष्णु के दो रूप होते हैं, ये ब्रह्म संहिता का की पढ़ाई करके हो सकता है, संक्षेप में समझाना उसको मुश्किल है, लेकिन महाविष्णु के दो रूप होते हैं, उनमें से एक निमित्त माया और निमित्त माया एक है जिसमें ये सारे भौतिक सृष्टि के निर्माण के लिए महाविष्णु व्यवस्था करते हैं। तो जो महाविष्णु इस कार्य के लिए रूप धारण करते हैं उसको शंभु या सदाशिव कहते हैं। तो ये सदाशिव के अवतार हैं अद्वैताचार्य, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिवजी करके संबोधित किया, शिवजी के अवतार करके संबोधित किया है। लेकिन इस बात को और विस्तार में कभी और पढ़ेंगे, क्योंकि इसको और गहराई में समझना आवश्यक है, नहीं तो इसको समझाना भी मुश्किल है। लेकिन इतना समझें कि वो महाविष्णु के भी अवतार हैं और सदाशिव के भी अवतार हैं, दोनों सही हैं अद्वैताचार्य।
ताकि माधवेंद्र प्रभु को जो भी मिलता था वो शुद्ध भक्त बनता था, कि कोई अगर उस ब्राह्मण को देखा, चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो सब बोलते थे कि माधवेंद्रपुरी से जरूर संबंध हुआ है, इसीलिए इसको शुद्ध भक्ति मिल रही है। लेकिन रामचंद्रपुरी को ऐसे क्यों नहीं हुआ?
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबको भगवान की कृपा मिल सकती है, वैष्णव की कृपा मिल सकती है, सिवाय उस व्यक्ति के जो वैष्णवों की निंदा करता है। वैष्णवों के संग में होते हुए भी वो वैष्णव की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है अगर वो वैष्णवों की निंदा करता हो तो। ये सबक इससे हम सीख सकते हैं कि माधवेंद्र पुरी चिंतामणि थे, सबको वैष्णव बनाया उन्होंने, शुद्ध वैष्णव बनाया, लेकिन रामचंद्र पुरी उससे प्रभावित, उस प्रभाव से दूर रहे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वैष्णवों की निंदा करने की आदत थी। केवल अगर वो मायावादी रहते, निराकार ब्रह्म की उपासना करते, फिर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी भी निराकार की उपासना करते थे, वेदव्यास का शंकर के भक्त बने। चार कुमार भी ब्रह्मवादी थे, महा भगवान विष्णु के चरण कमलों के तुलसी का गंध लेने से वो भी वैष्णव बन गए। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। तो रामचंद्रपुरी भी अगर केवल निराकारवादी होते तो फिर भी माधवेंद्रपुरी के संग से वो शुद्ध भक्त बन सकते थे, लेकिन क्योंकि उनके हृदय में वैष्णवों के प्रति निंदा करने की आदत थी तो ये बड़ी खतरनाक थी। इसलिए एक ऐसा कांटा था उनके हृदय में जिसकी वजह से वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए।
माधवेंद्रपुरी बहुत बड़े भक्त थे, फिर भी उनको लास्ट टाइम उनको शारीरिक तकलीफ सहनी पड़ी, इसका क्या कारण था?
भगवान ने ये तो कभी नहीं कहा कि शरीर में आराम मिलना है, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे भक्तों को मैं दुख नहीं दूंगा। प्रहलाद को कितना कष्ट हुआ, शरीर जब तक है तो तकलीफ तो होना ही है। प्रभुपाद जी को भी कितना कष्ट हुआ, शारीरिक कष्ट, लेकिन अपने मन में कृष्ण का स्मरण करते रहे। शरीर जब तक है, शरीर का धर्म है कष्ट देना, वो अपना धर्म करता रहेगा, लेकिन आत्मा का धर्म है कृष्ण का सेवा करना। अगर हम आत्मा के कार्य के स्थित के स्तर पर स्थित रहे तो शरीर अपना धर्म करता रहे या न करता रहे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हालांकि माधवेंद्र पुरी अपने अंतिम दिनों में बीमार थे, उनको जो दुख हो रहा था वो शरीर के कष्ट से नहीं हो रहा था, उनको आध्यात्मिक दृष्टि से दुख हो रहा था कि मैं कृष्ण को नहीं पा सका। हालांकि कृष्ण को पा चुके थे, लेकिन फिर भी ये विरह की भावना है, इसलिए वो सोच रहे हैं। वो दुख उनका उस बात का था, शारीरिक कष्ट हो रहा उसका दुख नहीं था उनको, वो तो शरीर से परे थे, शारीरिक दुख सुख से तो परे थे। उपाय एक ही है, नहीं करना। अगर नहीं करे न वैष्णव मिला तो नहीं होगी, लेकिन वातावरण भी ऐसे बनाना चाहिए हमें भक्तों के समाज में कि कोई दूसरा भक्त अगर निंदा करना शुरू भी करे कि दूसरे लोग उसको चुप कराएंगे, उसके भलाई के लिए और हम सबकी भलाई के लिए। क्योंकि जो वैष्णव निंदा करता है उसका नुकसान तो होता ही है, साथ साथ जो वैष्णव निंदा सुनता है उसका भी नुकसान होता है।
लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई वरिष्ठ है तो हमको उसको कहना भी मुश्किल होता है, और हम ये सोच भी नहीं सकते सचमुच में अपराध कर रहे हैं, वो भी नहीं सोच सकते, तो अब क्या करना चाहिए?
ऐसा होता है क्या कि ऐसे ही कुछ थियोरेटिकल बात बोल रहे? होता है ऐसे,
जैसे कि अभी
भक्त समाज में हो रहा है
अभी तो नहीं हो रहा है।
हाँ, तो फिर ठीक है।
भी उनके जो भाई थे परमानंद पुरी थे और चैतन्य महाप्रभु भी थे, जब उनको मालूम भी था तभी भी उनको कुछ नहीं कहते थे,
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सोचते थे कि ये बहुत वरिष्ठ हैं, चैतन्य महाप्रभु सम्मान दे रहे हैं, तो कुछ कह नहीं पाए उनको, लेकिन उनसे दूर रहते थे, सम्मान करते थे उनसे, लेकिन जितना हो सके दूर रहते थे। ऐसे अवस्था में देखते हैं कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ संभाल लेते हैं। हमसे बहुत वरिष्ठ है अगर कुछ कह रहे हैं, नम्रता से अगर कुछ कह दें तो ठीक है, वो नहीं भी ठीक नहीं भी हो सकता है तो दूर रहे, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर कृष्ण भगवान ही सब ठीक कर लेंगे। निंदा करने वाला आदमी ज्यादा देर टिक नहीं सकता भक्ति में, वो निश्चित बात है, क्योंकि एक गलती से दूसरी, दूसरी निंदा से तीसरी निंदा, ऐसे बढ़ते जाता है, फिर वो स्वभाव प्रवृत्ति बढ़ती जाती है निंदा करने की प्रवृत्ति।
की कृपा से हृदय परिवर्तन नहीं होता कि निंदा की प्रवृत्ति कम हो जाए, क्योंकि इतना लंबा संपर्क रहा उनका माधवेंद्र पुरी जी से, रामचंद्र पुरी जी का।
तो प्रभुपाद जी समझाते थे कि सूरज की किरणें सबके लिए हैं, लेकिन अगर किसी ने अपने घर में बैठकर खिड़की दरवाजे बंद कर लिए तो कौन उसका, कौन उसको सूरज की रोशनी दिखा सकता है?